नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। भारत और इजराइल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। अमरीकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला के तेल से जुड़े रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया। अमरीका के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद स्पेन और यूरोपीय देशों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया। और बेनोनी में भारत ने तीसरे अंडर 19 युवा एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इसराइल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया है। दोनों देशों ने इस खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। उन्होंने भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के आधार पर भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान अगुइलेरा ने कहा है कि भारत अमरीका और वेनेजुएला के बीच उत्पन्न स्थिति को द्विपक्षीय वार्ता और राजनयिक स्तर पर समाधान करने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली में एक निजी समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री अगुइलेरा ने कहा कि भारत इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है।
सभी लोग इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से कराने को इच्छुक हैं। इसका समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं किया जाना चाहिए।
श्री अगुइलेरा ने यह भी कहा कि वैश्विक दक्षिण के सिलसिले में भारतीय नेतृत्व विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर आधारित हो। श्री अगुइलेरा ने यह भी कहा कि 12 जनवरी को क्यूबा और भारत अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 66वीं वर्षगांठ मनाएंगे। अमरीकी सेना ने आज उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला के तेल से जुड़े रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मरीनारा को जब्त कर लिया। पहले बेला वन के नाम से जाना जाने वाला यह जहाज स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमरीकी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया है। अमरीकी यूरोपीय कमान ने यह कहा कि यह कार्रवाई अमरीकी न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग ने सेना के समन्वय से की है। आरोप है कि यह टैंकर अमरीकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए वेनेजुएला, रूस और ईरान के लिए तेल की तस्करी करने वाले गुप्त बेड़े का हिस्सा है। अमरीका की सेना ने कहा कि अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए और यूएससीजीसी मुनरो द्वारा पीछा किए जाने के बाद अमरीकी संघीय अदालत द्वारा जारी वारंट के तहत टैंकर को जब्त किया गया। दूसरी ओर रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। उसने कहा कि अमरीकी सेना ने मैरिनेरा जहाज पर कब्जा कर लिया जिसके बाद जहाज से संपर्क टूट गया। मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने की 24 तारीख को मैरिनेरा को रूसी झंडे के तहत यात्रा करने की अस्थायी अनुमति मिली थी। ईरान में विरोध प्रदर्शन दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और तेहरान, इलम, फासा और कई अन्य शहरों में फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि अब तक 29 से 36 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं जबकि 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक रिपोर्ट।
जनता के गुस्से को शांत करने के प्रयासों के क्रम में सरकार ने आज से परिवारों को लगभग $7 प्रतिमाह सब्सिडी देना शुरू किया ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की भरपाई की जा सके। हालांकि रियाल की भारी गिरावट और आयातकों तथा निर्माताओं के लिए तरजीही विनिमय दर को समाप्त करने के बाद खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 3 गुना तक बढ़ने की आशंका है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हतामी द्वारा इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में में संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद तनाव और बढ़ गया। ईरान में हाल के वर्षों में कई बार राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसराइल के साथ जून में हुए युद्ध के बाद कड़े प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के चलते दिसंबर में रियाल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। 28 दिसंबर को शुरू हुए ये प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। श्रीलंका में संकाय सदस्यों और छात्र अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सैन्य योजना और क्रियान्वयन में विशिष्ट और उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल द्विवेदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका गए हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्पेन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन को फिर से दोहराया है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन के साथ मिलकर दोनों देशों के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद यह प्रतिक्रिया आई है। यूरोप में बढ़ती चिंता के बीच नाटो के कई सहयोगी देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी कर दोनों देशों के प्रति समर्थन की पुष्टि की और आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और बहुध्रुवीयता के लिए प्रतिबद्ध दो देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना बेहद महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ बैठक के दौरान अपने शुरूआती भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो NSB ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP पर अपने क्षेत्र के निकट सैन्य अभ्यास करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो ने कहा कि अभ्यास के दौरान सरकारी नेटवर्क को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले तेज हो गए हैं। NSB ने कहा कि CCP ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सहयोगियों से ताइवान को मिल रहे समर्थन का मुकाबला करने, आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए चीन ने यह कार्रवाई की है। ISIS से संबद्ध आतंकवादी मेहमत गोरेन की गिरफ्तारी से यह बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को शरण दे रहा है। गोरेन यहया के नाम से भी जाना जाता है। उसे पिछले वर्ष दिसंबर में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया संगठन ने गिरफ्तार किया था। मेहमत पर आत्मघाती हमला करने की योजना बनाने का आरोप है। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्ला मुजाहिद ने एक ऑडियो संदेश जारी कर पाकिस्तान पर ISIS आतंकवादियों को पनाह देने की बात कही है। भारत स्थित अमरीकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि अमरीका के कानूनों का उल्लंघन करने पर छात्र वीजा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि यदि छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है तो वे किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है, उन्हें देश से निकाला जा सकता है और भविष्य में वे अमरीकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
बेनोनी में भारत ने तीसरे और अंतिम अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत के 394 रन के लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। किशन कुमार सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद इनान ने भी 2 विकेट झटके। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज की शतकीय पारी के बदौलत भारत ने 388 रन बनाए थे। इसके अतिरिक्त भारत को 5 पेनल्टी रन का भी इजाफा हुआ। उधर पीवी सिंधु और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग के अगले दौर में पहुंच गई है। 8वीं वरीयता प्राप्त सिंधु का मुकाबला कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की तोमोका मियाज़ाकी से होगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इसराइल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। अमरीकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में वेनेजुएला के तेल से जुड़े रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त किया। अमेरिका के ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के बयान के बाद स्पेन और यूरोपीय देशों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया और बेनोनी में भारत ने तीसरे अंडर 19 युवा एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।